स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 10 अक्टूबर दिन सोमवार। अमेरिका में ट्रंप और हिलेरी के बीच बहस शुरू। ओबामा ने कहा ट्रंप का चरित्र राष्ट्रपति दफ्तर के लायक नहीं।
One of the most disturbing things about this election is just the unbelievable rhetoric coming.
दोनों के बीच बहस पर होगी खास चर्चा। बीजेपी का आरोप एक विशेष समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है मायावती।
उन्होंने एक समुदाय विशेष यह अपील किया यदि आपके मत बढ़ते हैं कि यह उनका डर भय है और यह व्यवस्था के तहत भी उचित नहीं है, आप जाति समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं।
हैदराबाद में जैन समुदाय की एक 13 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में केस दर्ज। अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बहस से ठीक पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से निपटने के लिए उन पर जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली दूसरी बहस से ठीक पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उनके साथ कई ऐसी महिलाएं मौजूद रहीं जिन्होंने हिलेरी के पति और पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रूडी जुलियाने ने कहा कि ट्रंप इस बहस के दौरान बिल क्लिंटन पर इन यौन शोषण के आरोपों का जिक्र कर सकते हैं। ट्रंप अपने 11 साल पुराने एक वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार आलोचना झेल रहे हैं। इस वीडियो में वो महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करते सुनाई दे रहे हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में समुद्री तूफान मैथ्यू की वजह से गंभीर बाढ़ आ गई है। मैथ्यू की वजह से अमेरिका में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को उनके घरों और कारों से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। मैथ्यू की तीव्रता अब धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं हेती में तूफान की वजह से हुए नुकसान का अब तक सही आकलन नहीं लगाया जा सका है। हेती में मैथ्यू की वजह से 900 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इथियोपिया की सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी लागू करने के लिए पूरे देश में सेना तैनात की जाएगी। हाल ही में सरकार ने इथियोपिया में 6 महीने का आपातकाल घोषित किया है। इथियोपिया के सूचना मंत्री गेटाचू रेडा ने बीबीसी से कहा कि स्थानीय सुरक्षा बल सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रहे हैं। इन प्रदर्शनों में इथियोपिया की 2 सबसे बड़ी जनजाति ओरोमो और अम्हारा शामिल हैं। गेटाचू ने कहा कि सभी सुरक्षा बल प्रधानमंत्री हेल मेरियम डेसालन के अंतर्गत काम करेंगे। उन्होंने कहा आपातकाल के तहत लोगों के कुछ लोकतांत्रिक अधिकार अस्थायी रूप से वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन हम ऐसा करते वक्त घटना विशेष और परिस्थितियों का ख्याल रखेंगे। भले ही आपातकाल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब हमें और सुरक्षा बलों को लगेगा कि देश में शांति स्थापना के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित करना है, तो ऐसे किया जाएगा, जैसे कर्फ्यू लगाना वगैरह। ये थे इथियोपिया के सूचना मंत्री गेटाचू रेडा, जो देश में लगाई गई इमरजेंसी के बारे में जानकारी दे रहे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस ने कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार से मिली राशि को अपने देश के गृह युद्ध पीड़ितों को दान में देंगे। पिछले महीने फार्क विद्रोहियों के साथ शांति समझौते के उनके प्रयासों की नॉर्वे में अवार्ड ज्यूरी ने तारीफ की थी। बीबीसी समाचार।
एक दफा फिर स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 10 तारीख और दिन सोमवार। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। इस समय जब आप सुबह की चाय के साथ अपने अपने रेडियो सेट और इंटरनेट पर बीबीसी हिंदी सुन रहे हैं, तो अमेरिका के शहर सेंट लुइस में इस वक्त रात के 8:03 हो चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्मीदवार यानी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के बीच लाइव बहस बस कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें ट्रंप पर हैं क्योंकि कल ही उनका 11 साल पुराना एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करते हुए देखे गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हीं के पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे चुनाव न लड़ने की अपील की है। अपील करने वालों में पिछले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे जॉन मैकेन, पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस शामिल हैं, लेकिन ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा,
One of the most disturbing things about this election is just the unbelievable rhetoric coming at the top of the Republican ticket. I don't need to repeat it.
इस चुनाव में जिस तरह से रिपब्लिकन उम्मीदवार लगातार बेहूदी बातें कर रहे हैं वे बड़ी परेशानी वाली बात है। उन्होंने क्या कहा ये मैं दोहराना नहीं चाहता। वो न सिर्फ औरतों का अपमान कर रहे हैं बल्कि अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, दूसरे मजहब के लोगों, यहाँ तक कि हमारी सेना का भी अपमान कर रहे हैं। ये बताता है कि वो कितने असुरक्षित हैं। ये शख्स दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत जताना चाहते हैं। मैं ऐसे शख्स को अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर कतई नहीं देखना चाहता। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द जो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी से थोड़ी देर पहले कहे थे। और इस वक्त अमेरिका के सेंट लुइस शहर में दोनों उम्मीदवार आ चुके हैं और बस बहस शुरू होने वाली ही है। जो प्रोग्राम की अनाउंसर हैं वो बता रही हैं कि बस अब बहस शुरू होने वाली है।
That's a very good question because I've heard from lots of teachers
ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन। लेकिन इस वक्त सीधे चलते हैं सेंट लुइस जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, क्या बहस शुरू हो गई है?
जी हाँ इकबाल, अब से कुछ ही पल पहले ये शुरू हुई है और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ एक टाउन हॉल फॉर्मेट है, यानी कि यहाँ पर एक तो जो मॉडरेटर्स होंगे वो तो सवाल पूछेंगे ही दोनों उम्मीदवारों से, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को आमंत्रित भी किया गया है जो माना जा रहा है कि इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है कि वो किसको वोट देंगे अभी तक, और वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं जो आम जनता के लोग हैं। डिबेट शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन महिलाओं के साथ एक फेसबुक लाइव के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिन्होंने अतीत में बिल क्लिंटन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और अंदाजा है कि वो बिल क्लिंटन के अतीत को बड़ा मुद्दा बनाते हुए हिलरी पर निशाना साधेंगे और कह सकते हैं कि जो बिल क्लिंटन की जो कारस्तानियां थी उसमें वो हिलरी भी भागीदार थी। लाखों अमरीकी और दुनिया के तमाम देशों में इसे देखा जा रहा है और ये डिबेट काफी हद तक फैसला करेगा कि ट्रंप की चुनावी मुहिम में कोई जान बचती है या नहीं, क्योंकि अमरीकी मीडिया की माने तो वो बिल्कुल जैसे आईसीयू में पहुंच चुकी है और उनके पास 90 मिनट हैं उसमें जान फूंकने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो वीडियो आया है उसका काफी अंदाजा है कि नुकसान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। 24 रिपब्लिकन दिग्गज नेता जो है वो उनसे रेस से बाहर होने के लिए अपील कर चुके हैं और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ट्रंप क्या रणनीति अपनाते हैं।
जी ब्रजेश, आपने कहा कि 90 मिनट उनके लिए हैं उनके पास, हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन एक तरफ उन्होंने माफी मांगी और दूसरी तरफ जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है, उन जिस तरह से संदेश आ रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, डिफायंस दिख रहा है, यानी वो खारिज भी कर रहे हैं अपने ऊपर लगे आरोपों को और ये कह रहे हैं कि साहब मैं जिस तरह का हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं शायद मैं वैसा नहीं हूँ जो वीडियो में है, तो ये दोनों बातें क्या अमरीकी वोटरों को अब प्रभावित कर सकेंगी?
देखिए, उनके जो खास के जिन्हें हम कोर सपोर्टर्स कहते हैं उन्हें ट्रंप कुछ भी कर दें उनको नहीं प्रभाव, उनका मन नहीं बदलने वाला है। लेकिन ये चुनाव, जैसा कि मैं पहले के कार्यक्रमों में भी कहता रहा हूँ कि सिर्फ जो कोर वोटर्स हैं उनकी बदौलत नहीं जीता जा सकता है, उन्हें नए वोटर्स खासतौर से महिलाओं के वोट अपनी तरफ करने होंगे अगर वो जीतना चाहते हैं, और वो फिलहाल इस वीडियो के बाद उनसे और दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में जैसे एक अभी बहस सिर्फ ट्रंप की बातें हो रही हैं और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि बच्चों के लिए किस तरह का रोल मॉडल इस पीढ़ी के लिए वो बन सकते हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस 90 मिनट में अपना किस तरह का बचाव करेंगे, क्या वो बचाव करके लोगों को समझा पाएंगे या हिलरी क्लिंटन को और अपने से बुरा उम्मीदवार दिखाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका, और एक दफ़ा फिर सुनने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं।
$800 billion deficit. It's hard to believe. Inconceivable. You say, who's making these deals? We're going to make great trade deals. We're going to have a strong border. We're going to bring back law and order. Just today, policemen
were shot. इस पूरे चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाषा के लिए खास तौर पर जाने जाते रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले मैंने बात की सेंट लुइस में ही स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक पढ़ाने वाले प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर वारसी से, और उनसे पूछा कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की भाषा को वो बहैसियत लिंग्विस्टिक प्रोफेसर कैसे देखते हैं। तो उनका कहना था,
शुरू से ही जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कैंपेन में और हर जगह जगह कहीं पे, वो कहीं ना कहीं जो नौजवान तबका है उनको बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है। खास करके वो लोग जो कि मैं कैंपस में पढ़ाता हूँ, तो मैं ज्यादातर कैंपस के छात्रों से मिलता जुलता हूँ, बातें करता हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है कि जो हम एक सिविलाइज सब समाज की बात करते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो उसको लीड करने वाला जो हमारा नेता हो वो कैसा हो, तो उसकी भाषा जो है, भाषा का इम्पैक्ट बहुत एरोगेंट हुआ करता है। और कहीं भी आप देख लीजिए, कभी आज का ही आप एपिसोड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीडियो में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो इस तरह कहीं बहुत ज्यादा उनका जो है निगेटिव इम्पैक्ट उनको देखने को मिल रहा है, खास करके यंग जनरेशन में। और वो जो पढ़े लिखे तबका है उनमें, जो लोग अपने आप को एक इलीट क्लास समझते हैं, उनमें बहुत उनके प्रति एक सहानुभूति कहते हैं, वो सहानुभूति उनका बहुत ही कम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे जैसे कैंपेन करीब आ रहा है, जो पोलिंग करीब आ रहा है, उनके भाषा की वजह से उनका जो रेटिंग है वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होती दिख रही है।
क्या उनकी जो प्रचार करने की एक खास शैली थी, जिस तरीके से वो अब तक अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे थे, तो आखिर उनको समर्थन भी शुरू में मिलने की यही वजह थी, और आप अब कह रहे हैं कि उनके भाषा के ही कारण उनका समर्थन कम होता जा रहा है।
देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से जब उनका कैंपेन चला तो आम लोगों में जहनी तौर पर उन्होंने ये बनाया था कि ये कभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो ही नहीं सकते, लेकिन उनकी जो रेटिंग उस वक्त थी वो लोग एक मनोरंजन के तौर पर उनको लेते थे और बहुत ज्यादा उनको देखते थे कि चलो आज इसने क्या ऐसी बात बोलेगा जो लोगों को हंसने पे मजबूर कर देगा, तो सीरियस तौर पे उनको कभी किसी ने भी नहीं लिया। लेकिन एक जो सीरियस डिबेट होता है, सीरियस टॉक होता है, सीरियस बातचीत होती है, जो अंदाज होता है, जिसके अंदर एक डीप सेंस और मीनिंग होता है, वो डीप स्ट्रक्चर कहीं भी उनके भाषण में कहीं भी लोगों को नहीं नजर आया। लोग इसलिए उनको शुरू में पसंद करते चले गए कि चलो ये तो कभी ना कहीं ये तो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हो ही नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे जब डिबेट या कैंपेन या जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नजदीक आता गया और जब लोग सीरियसली इनको देखने लगे, तो ऐसा लगा कि इनके अंदर वो चीजें नहीं है जो एक प्रेसिडेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वर्ल्ड को लीड करने की, अपने देश को लीड करने की सलाहियत होनी चाहिए, वो इनमें कहीं बहुत ही कम नजर आने लगी। कभी वो मैक्सिकन के बारे में बोलने लगे, कभी वो मुस्लिम के बारे में बोलने लगे, कभी वो किसी के काले लोगों के बारे में बोलने लगे, तो ऐसा लगने लगा कि ये तो एक ऐसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कभी भी कोई सीरियस इशू पे बात नहीं करते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम इम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। इन सब चीजों को दूर करने की बजाय उनको लोग सीरियस कभी नहीं लिया, और यही वजह है कि आप जब सीरियस डिबेट की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी रेटिंग भी कमजोर होती जा रही है।
ये थे सेंट लुइस में स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर वारसी, और इस वक्त जैसा कि मैंने बताया सेंट लुइस में वहाँ पर बहस जारी है ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के दरमियान। एक दफ़ा फिर चलते हैं वहाँ, सुनने की कोशिश करते हैं।
Because we've seen this throughout the campaign.
हिलेरी क्लिंटन कह रही कि पूरे प्रचार के दौरान ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, हम लोगों ने वो देखा है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं। ये बहस 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे चलेगी, तो हम अगले कार्यक्रम में भी ज़रूर आपको बताएंगे कि इस दौरान क्या क्या बातें हुई।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक दफा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:44:30 और अब बात उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का सांप्रदायिकरण करना चाहती है। लखनऊ रैली में मायावती ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कल कि बीजेपी को हराने में वही सक्षम है, इसलिए ये लोग बीएसपी को ही वोट करें। वहीं जानकारों का कहना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी का ये शुरू से ही एजेंडा रहा है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पार्टियां राजनीतिक गोटियां बिछाने में लग गई हैं। लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर रविवार को हुई रैली में मायावती ने मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी को हराने में उन्हीं की पार्टी सक्षम है, लिहाजा इस समुदाय के लोग अपने मतों को बिखरने से बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के ही पक्ष में मतदान करें। बीजेपी ने इस पर सख्त एतराज जताया है और आरोप लगाया है कि मायावती आगामी विधानसभा चुनाव में संप्रदाय विशेष से वोट मांगकर मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं। पार्टी नेता विजय बहादुर पाठक,
पूरी अगर आप उनके भाषाओं को के लबोलवाब को देखेंगे तो वो ये कहती हुई नजर आई कि भाजपा आ रही, और यह कहते हुए उन्होंने एक समुदाय विशेष यह अपील किया यदि आपके मत बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि यह उनका डर भय है और यह व्यवस्था के तहत भी उचित नहीं है। आप जाति संप्रदाय के नाम पे वोट नहीं मांग सकती है, लेकिन बसपा है, निराश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसी का।
दरअसल मायावती ने रैली में साफ तौर पर कहा था कि राज्य में बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही हरा सकती है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इधर उधर न भटकें और सिर्फ बीएसपी के ही पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बयान से साफ जाहिर है कि बीएसपी नेता अपनी हार मान चुकी हैं। पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
देखिए कहीं न कहीं मायावती जी हताशा जैसे लगता है, हार अभी से उन्होंने मान ली है, लगभग उन्होंने हार मान ली है। और जिस तरह से वो मुसलमानों की बात कर रही, क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश का मुसलमान या देश का मुसलमान भूल जाएगा कि मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार सरकार बनाई थी, और नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब उनका प्रचार करने गई, 1 बार नहीं 2-2 बार। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही अकेला एक दल है जिसके नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, वही एक रोक सकते हैं इस देश में और वही इसके सबसे बड़े योद्धा है। मायावती जी तो सिर्फ बातें करती हैं, बाकी कुछ नहीं।
मायावती ने मोदी सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उधर जानकारों का कहना है कि किसी समुदाय विशेष को संबोधित करना इस पार्टी की संस्कृति रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। लखनऊ में हिंदुस्तान टाइम्स की संपादक सुनीता एरन कहती हैं,
मायावती जी तो इनकी पार्टी का तो यही कल्चर है ना, जब वो कास्ट रैली करते थे, कुशवाहा की रैली करी, इसकी रैली करी, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की। एंड अगर आपको याद हो जब कांशीराम जी थे तो वो ये भी कहते थे हमारा मुख्य सचिव इस कास्ट का है, हमारा बीजेपी हमने इस कास्ट का बनाया है, हमने इसे समझी इस कास्ट, तो उनकी जो राजनीति है उसमें थोड़ा खुल के बोला जाता है।
मायावती ने रैली में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर घेरा, लेकिन जानकारों का कहना है कि मुसलमानों पर उनके बयान से ये साफ है कि मायावती कहीं न कहीं 2007 के चुनाव की रणनीति को ही दोहराने जा रही हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब बात हैदराबाद की। हैदराबाद शहर की 13 साल की एक लड़की की कथित रूप से 68 दिनों के उपवास की वजह से हुई मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक गैर सरकारी संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने पत्रकार इमरान कुरैशी से इस बारे में और जानकारी ली।
पुलिस ने जब बाल अधिकार संगठन बलाला हक्कुलु संगम ने एक कंप्लेन दर्ज की थी तो उसके मुताबिक एक प्रारंभिक जांच की पुलिस ने, और उसके बाद आज एक FIR दर्ज की है, और इस मामले में अभी से वो एक फॉर्मल तरीके से वो अभी जांच होगी। मतलब ये कि पुलिस को कुछ लगता है कि कुछ इसमें शिकायत में कुछ दम है।
किन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है?
अभी जो धाराएं हैं वो इंडियन पिनल कोड के मुताबिक लापरवाही का ऐसे मौत होने की का एक है 304 सेक्शन क्लॉज ए, जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। और उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों के प्रति क्रूरता का मामला भी दर्ज किया गया है, तो उसके लिहाज से अगर गए तो उसमें 3 साल की भी जेल हो सकती है। तो लड़की के माँ बाप से पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद जो भी कदम लेना चाहिए वो लेंगी।
और जिस संगठन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है?
मेरी बात हुई अच्युत राव से, जो संगम के अध्यक्ष हैं। उनका मानना था कि पुलिस 302 मतलब खून का इल्जाम लगाना चाहिए था खुल पिनल कोड के तहत, क्योंकि ये बाकायदा एक नाबालिग लड़की का खून हुआ है। उनके लिहाज से अगर देखे तो ये खून है।
ये थे इमरान कुरैशी। आज सोमवार का दिन है और आज हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान से वसतुल्लाह खां की डायरी। तो सुनते हैं कि इस बार अपनी डायरी में वो क्या कह रहे हैं।
वैसे तो हमारे यहाँ हर मोड़ और महीना ही नाजुक होता है, लेकिन ये महीना तो बहुत ही नाजुक लग रहा है। सीमा पर टेंशन तो चल ही रही है, मगर अंदर भी बहुत कुछ है। नया आर्मी चीफ कौन होगा या फिर पुराना ही चलेगा? इमरान खान, जिन्हें कश्मीर से ज़्यादा पनामा गेट स्कैंडल से दिलचस्पी है, इस बार उनका ख्याल बल्कि विश्वास है कि वो राजधानी इस्लामाबाद बंद कर देंगे, ताकि नवाज शरीफ मजबूर हो जाएं कि अपना त्याग पत्र हाथ में पकड़े इमरान खान के चरणों में बैठ के गिड़गिड़ाएं, महाराज प्रधानमंत्री पद तो आपका हक है, मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी मक्के मदीने की गलियों में झाड़ू लगा के बिता ही लूँगा। इमरान खान केवल अपने हिमायतियों के लिए ही नहीं, अपने दुश्मनों के लिए भी पहेली हैं। एक लम्हे लगता है वो पाकिस्तान के अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरे मिनट में लगता है डोनाल्ड ट्रंप हैं। कभी कभी यूं भी लगता है कि इमरान खान का बस चले तो अपने खिलाफ ही आंदोलन खड़ा करके धरने पर बैठ जाएं। कभी लगता है वो किसी एजेंसी के हाथ में 6-2 साइज का वो पाना है, जिससे हर कुछ समय बाद नवाज शरीफ की चूलें कसने का काम लिया जाता है। मगर पाना तो पाना होता है, उसे प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया जा सकता ना। कुछ भी हो, इमरान खान वो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जिसके होते हर कोई सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार फिर नवाज शरीफ पे ही गुजारा कर लो। इमरान खान से इस बार इस्लामाबाद बंद हो ना हो, चैनलों के एक बार फिर मज़े आ जाएंगे। वैसे भी 24 घंटे में से 20 घंटे का ड्रामा खुद चल के आ जाए तो किस खबर के भूखे चैनल को बुरा लगता है। ये महीना इसलिए भी नाजुक है कि बॉलीवुड ने पाकिस्तानी फनकारों का बाइकॉट कर दिया है, तो हमने भी भारतीय सिनेमा का बहिष्कार कर दिया, ये सोचे बगैर कि हमारा तो अपना सिनेमा घर ही बॉलीवुड की नींव पे खड़ा हुआ है। साल के 10 हफ्ते हम पाकिस्तानी फिल्में दिखा लेंगे, बाकी 42 हफ्ते अपने 80 से अधिक मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स का पेट कैसे भरेंगे? 80 के दशक में जब जनरल ज़िया ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का गला अपने हाथों घोटा, तो मालिकों ने अपने सिनेमाओं को सुपरमार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स और पार्किंग लॉट बना दिया। इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? बस यूं समझ लें कि भारत में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ है, लगभग वही हमने भारतीय फिल्मों का बाइकआउट करके अपने साथ कर लिया है। सियाने ठीक ही कहते थे, अंधी देशभक्ति और शादी के मंडप पर दिमाग का क्या काम।
ये थे पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान। और अब वक्त हो गया अखबारों की समीक्षा का। प्रभात बताएं।
जी इकबाल, मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ा है, जिसमें पहले पन्ने पर इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था, उसी तर्ज पर एक बार फिर से इसी तरह के हमले की योजना बना रहा है। अखबार कहता है कि नियंत्रण रेखा के पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से ISI इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसने जैश ए मोहम्मद से इसका बदला लेने को कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर के मुताबिक भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज़्यादा नुकसान चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा को उठाना पड़ा। अखबार के मुताबिक लश्कर के कम से कम 20 लड़ाके इसमें मारे गए। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को भी सुर्खी बनाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस साल का दशहरा उत्सव देश के लिए बेहद खास है। समझा जा रहा है कि उड़ी हमले के बाद पनपे भारत पाकिस्तान तनाव और उसके बाद भारत की कथित सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। इंडियन एक्सप्रेस में ही लखनऊ में बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती की रैली की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें मायावती मुसलमान वोटरों से अपील कर रही हैं कि अपना वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बेकार ना करें। इसी रैली में भगदड़ मचने से दो लोगों की मौत हो गई। मेरे हाथ में इस समय हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार कहता है कि सरकार 8वीं तक फेल करने की जो नीति है उसे फिर से लागू करेगी। अभी शिक्षा अधिकार कानून के तहत पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों को फेल नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें खबर है कि इस बार देश के लोग ज़्यादा ठंड के लिए तैयार रहें। जी इकबाल,
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका। और अब बात खेल की। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। खेल के दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट पर 557 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब न्यूजीलैंड ने बिना नुकसान 28 रन बना लिए हैं। दूसरे दिन के खेल पर एक रिपोर्ट के साथ सुनिए आदेश कुमार गुप्त को।
विराट कोहली के कप्तान के रूप में बनाए गए रिकॉर्ड दोहरे शतक और अजिंक्य रहाणे के शानदार 188 रनों की मदद से भारत ने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कल दूसरे दिन अपनी स्थिति बेहद मजबूत करने के बाद 8 विकेट पर 557 रन के स्कोर पर पारी समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद स्टंप के समय न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन था। मार्टिन गप्टिल 17 और टॉम लैथम 6 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले कल विराट कोहली ने 103 रनों से आगे खेलते हुए अपनी पारी शुरू की और वो 211 रन बनाकर ऑफ स्पिनर जीतन पटेल की गेंद पर LBW हुए। इस दौरान उन्होंने 366 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके लगाए। विराट कोहली के अलावा कल अजिंक्य रहाणे ने भी 79 रनों से आगे खेलना शुरू किया और अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक जमाते हुए 18 चौके और 4 छक्कों की मदद से 188 रन बनाए। रहाणे ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर विकेटकीपर वाटलिंग के हाथों लपके गए। उन्होंने 381 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए 365 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। इसके साथ ही उन्होंने चौथे विकेट के लिए सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण के 353 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए केवल 63 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के जमाते हुए नाबाद 51 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 17 रन बनाए। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 113 रन देकर 2, जीतन पटेल ने 120 रन देकर 2 और मिचेल सेंटनर ने 137 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कल के दिन का खेल समाप्त होने के बाद अजिंक्य रहाणे ने टीम की रणनीति को लेकर कहा।
जब हमारी पार्टनरशिप चल रही थी हमें पता था कि हमारे बॉलर्स के लिए अच्छा एक स्पॉट बन रहा है। जडेजा और अश्विन अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है था कि हम लोग न्यूजीलैंड टीम को कितने देर तक फील्ड पे खड़ा रह सकते हैं, क्योंकि टायर्ड होने के बाद चांसेस होते हैं कि एंड ऑफ डेज पे आप उनके 1 या 2 विकेट लेते हो। बट दिन वापस क्रुशियल होगा, जरूर स्पिनर्स के लिए हेल्प है बट हमें थोड़ा पेशेंटली बॉलिंग करना होगा। विकेट मेरे ख्याल से स्लाइटली बेटर है बैटिंग के लिए बट धीरे धीरे थोड़ा स्लो होते जाएगा और स्पिनर्स के लिए काफ़ी और हेल्प मिलेगा।
अब न्यूजीलैंड का पहला लक्ष्य 358 रन बनाकर फॉलो ऑन टालना होगा।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि अमेरिका के सेंट लुइस में दोनों राष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस जारी है, तो एक दफा फिर चलते हैं वहां और सुनते हैं कि क्या हो रहा है उस बहस के दौरान।
Allowing this to happen, our Justice Department, where her husband goes onto the back of an airplane for 39 minutes, talks to the Attorney General days before a ruling is going to be made on her case. But for you to say,
तो अब तक जो कुछ हुआ उसमें हिलरी क्लिंटन से कुछ ही दिनों पहले उनके जो ईमेल लीक हुए थे उसके बारे में उनसे सवाल किया जा रहा है और ट्रंप से जो 2 दिन कबल एक वीडियो जारी हुआ उस पर सख्त सवाल किए जा रहे हैं। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच बहस जारी। बहस में 11 साल पुराने एक वीडियो में महिलाओं के बारे में की गई अश्लील टिप्पणी के लिए जहां ट्रंप ने मांगी माफी, तो हिलरी क्लिंटन ने कहा कि महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखने वाला शख्स राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं। अमरीका के उत्तरी कैरोलिना में समुद्री तूफान मैथ्यू की वजह से गंभीर बाढ़ आ गई है। मैथ्यू की वजह से अमरीका में कम से कम 16 और हेती में 900 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इथियोपिया की सरकार ने कहा है कि इमरजेंसी लागू करने के लिए पूरे देश में सेना तैनात की जाएगी। हाल ही में सरकार ने इथियोपिया में 6 महीने का आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस ने कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार से मिली $9,00,000 की राशि यानी तकरीबन 6 करोड़ रुपए को देश के गृह युद्ध पीड़ितों को दान में देंगे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक 1 घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।